چلتے ہیں قرآن کے پیغام پہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. پیغام قرآن، پارہ نمبر 26، سورۃ الاحقاف سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے. احقاف حقفن کی جمع ہے، ٹیلے کو کہتے ہیں. سینڈ ڈیومز ایک قوم کا نام ہے. اگر اوور آل دیکھیں تو اس میں پہلی 6 آیات شرک کی مذمت پہ ہیں، پھر آیت 7 سے 12 مشرقین مکہ کے ساتھ کشمکش ہے، 13 سے 16 ایک مثالی کردار، اور آیت 17 سے 20 برا کردار. اس کے بعد آیت 21 سے 28 تاریخ سے عبرت، اور آیت 29 سے 32 ایمان افروز دعوت ہے جنات کی، اور پھر سورت کے اینڈ تک 33 سے 35 احوال آخرہ، آخرت میں کیا ہونے والا ہے. اگر ان چیزوں کو دیکھے تو ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کیسے لیں. آیتوں کے ٹاپکس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا چلتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ جو ترتیب ابھی ہم نے دیکھی، اگر اسی میں سے دیکھے تو پہلی 6 آیات شرک کی مذمت کی ہیں. شرک کیا ہے؟ ذرا سے اس پہ سوچیے. شریکا، اللہ کے ماں سوا کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دینا. کیا ہمیں ان 25 پاروں کے پڑھنے کے دوران شرک کی قباحت سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، کیونکہ شرک وہ گندگی ہے کہ جس کے ساتھ انسان اس دنیا میں نہیں چل سکتا، اور اگر یہاں کر بھی لے گا کچھ دن موج مستی تو کل اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں داخل ہونے دیں گے. الیگل ہے اس شخص کا کسی جگہ رہنا جو شرک میں ہو. ایکسپائرڈ ویزا ہے اس شخص کا جو کسی جگہ شرک کے ساتھ رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پورا حق ہے، پورا اختیار ہے اس شخص کو اس دنیا سے اٹھانے کا. دیکھیے، آپ کسی کے ملک میں بغیر اس سے اجازت لیے تو نہیں رہتے نا. تو کیا پتہ چلا پہلی 6 آیتیں شرک سے بھرپور ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، مجھے دکھاؤ تو صحیح تمہارے خدا نے کیا بنایا، یا جن کو تم اللہ کے مددگار کہتے ہو انہوں نے کیا بنایا. پھر اب دیکھیں آیت 7 سے 12 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش ہے. حق کے ساتھ کشمکش شروع ہو جاتی ہے جب باطل کا اس سے ٹکراؤ ہوتا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو حق اور باطل کے آپس میں ٹکرائے جانے سے ہمیشہ ہی فرکشن بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ انسان رہتا ہے. پھر جائیے پیچھے ذرا دیکھیے تو اور کیا ہے. آیت نمبر 13 سے 16 مثالی کردار، یہ کس کا ہے؟ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دعوت دیتے ہیں استقامت فی الدین کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. استقامت میں قیامت ہے. کوئی شخص کتنا ہی زیادہ عقل مند ہو جائے، بہادر بن جائے، اچھا ہو، آپ اس کے گن گائیں، لیکن وہ اپنی کام پہ باقی نہ رہے، اگر آپ ایسے شخص کو ہائر کرنا چاہیں تو آپ رکھیں گے؟ کتنی ہی خوبیاں کسی میں کیوں نہ ہوں، کیا آپ ایسے ملازم کو رکھیں گے؟ کبھی آئے کبھی نہ آئے. آپ کسی ایسے رشتہ دار کے گھر جائیں گے، ایک دفعہ آپ جائیں تو بہت اچھی طرح سے آپ کو ویلکم کرے، سوچیے نہیں جائیں گے. تو اللہ کو بھی وہ بندہ نہیں اچھا لگتا جو بندہ اللہ کے ساتھ سنسیئر نہ ہو، سنجیدہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے راستے پہ کھڑے ہونے والے ہی اللہ کو اچھے لگتے ہیں. تو پچھلے اس پارے میں بھی ہم نے استقامت کی بات دیکھی، یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون. تو اللہ سے استقامت مانگیے. جو مشکل وقت میں جم جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پھر ان کو بے خوف اور بے غم کر دیتے ہیں. آج ساری دنیا خوف اور غم کا شکار ہے. اگر آپ استقامت کے ساتھ اللہ کے رستوں میں کھڑے ہیں نا، تو انشاءاللہ آپ کا دل آج بھی مطمئن ہوگا، اور آپ اپنے دل کے سکون اور اطمینان سے پہچان لیں گے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. پھر آیت 17 سے 20 برا کردار ہے، ماں باپ کے ناطے سے خاص طور پہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور اسی طرح سے وہ کردار کہ جو ماں باپ کے ساتھ گستاخیاں کرتا ہے. वल्लज़ी क़ाल अली वालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा, उफ़ तुमने तो मुझे तंग कर दिया। ये कैफियत, अल्लाह ताला हम में से किसी को भी ऐसी औलाद ना बनाए। फिर आयत नंबर 21 से 28, 21 से 28, तारीख से इबरत। तारीख से इबरत वही लोग लेते हैं जो पीछे मुड़ के देखते हैं, वरना तो लोग इसके मामले में कुछ और ही बातें करते दिखते कि हम पीछे क्यों देखें। और याद रखिए, जिस पे तकब्बुर होगा ना, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, इवन गलती करके भी नहीं मानेगा। तो अल्लाह ताला ने बस कुरखा आदिन से लेकर अगली आयत में बताया कि देखो, पिछली कौमों ने जब अम्बिया कराम की नाकदरी की तो अल्लाह ने उनको कैसे पकड़ा, तो आज तुम कैसे कह सकते हो कि तुम बचोगे। फिर इसके बाद देखिए आयत नंबर 21 से 28, तारीख से इबरत, और फिर 29 से 32, जिन्नात की ईमान अफरोज दावत। जब इंसान बात ना सुने तो अल्लाह ताला उसकी जगह फरिश्तों और जिन्नों को भेज देता है। हदीस में आता है कि जब कोई महफिल इल्म दीन के नाम पे हो और वहाँ जगह जो खाली बचती है, अल्लाह ताला वो उस जगह पे फरिश्तों को भेज देता है। तो हमें तो वो लोग नज़र आते हैं, उनकी आइडियाज़ दिखती है ना जो होते हैं, अल्लाह को वो भी लोग दिखते हैं कि जो हमें नज़र नहीं आते। तो जब तबी सल्लम ताइफ के सफ़र से वापस आए तो जो हालात हुए उसी का जिक्र इन आयात में। और फिर आप देखिए 33 से 35 हवाले आखिरा। अल्लाह ताला आखिरत को सामने लाकर बार बार हमारे सामने एक बहुत बड़ा आईना रखते हैं कि इस आईने में देख लो कि कल तुम किधर जाने वाले हो। ज़रूरत इस बात की है कि इसको देखने, पढ़ने, सुनने के बाद अभी दुनिया में ही हम फिक्र करें। व यौम युरदुल्लज़ीन कफरू अलन्नार, और पूछा जाएगा अलैसा हाज़ा बिलहक, क्या ये हक नहीं, ये सच नहीं, क्या अल्लाह ताला तुम ऐसे ही कहते थे। तो फिर इंसान को यकीन आएगा। फिर उसके बाद अब देखते हैं चंद आयतों को ख़ास तौर पे बतौर ख़ास कुछ वजाहत के साथ। आयत नंबर 15, हिदायत है घर वालों के लिए, कीमती दुआ है। ववस्सैना अल इंसान बि वालिदैहि एहसाना, हमलतहु उम्मुहु कुरहा वदाथहु कुरहा, व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा, हत्ता इज़ा बलगा शुद्दहु व बलगा 40 सना। और हमने इंसान को उसके वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करने का हुक्म दिया, उसकी माँ ने उसे तकलीफ़ झेल कर पेट में रखा और तकलीफ़ बर्दाश्त करके इसे जना। इसके हमल का और इसके दूध छुड़ाने का ज़माना 30 महीने का है, यहाँ तक कि जब वो अपनी पुख्तगी और 40 साल की उम्र को पहुँचा तो कहने लगा। दुआ देखिए आयत 15 में, रब्बी औज़ेनी अनशकुर नेमतकल्लती अनमता अलैया वाला वालिदैया वनामल सालेहन तरदाखू बस लिख ली फी जुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ए मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर इनाम की है, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूँ जिनसे तू खुश हो जाए, और मेरे लिए मेरी औलाद में सलाह और तकवा दे। मैं तेरी तरफ रजू करता हूँ और मैं फरमाबरदारों में से हूँ। हकीकत यह कि इंसान अगर माँ बाप को कोई अच्छी चीज़ दे सकता है तो वो दुआएं, और दूसरी चीज़ उनका सदका जारिया बनना है। कुछ औलादें माँ बाप की खिदमत करती हैं, कुछ उनके लिए खाने बनाते हैं, कोई पैसा कमाते हैं। बेटों से तो ख़ास तौर पे माँ बाप को बड़ी उम्मीदें होती हैं कि ये बुढ़ापे में हमारे काम आएंगे, ये हमारा ख्याल करेंगे, इनके बच्चे होंगे। बेटियों से भी कुछ इसी किस्म की उम्मीदें होती हैं कि चले दुख सुख के साथी होंगे। लेकिन ये सब चीज़ें छोटी हैं इस चीज़ के मुकाबले में कि रब्बी औज़ेन या नशकुर नेमतकल्लती। आप देखिए कि माँ बाप के जितनी भी नेमतें होती हैं ना, उसमें अक्सरियत बच्चे इस्तेमाल करते हैं, इवन ज़िंदगी में भी और बाद में भी। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना लोग, बच्चों के लिए तो सब करता है, लेकिन जब एक बंदा ये कहता है ना कि अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं उन नेमतों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करूँ जो तूने मेरे माँ बाप को दी, तो दर हकीकत कर द्वाप नहीं लिए रहा, कह बाप माँ बाप का नाम रहा। तो शॉर्टकट्स हैं, कुछ होशारे हैं कि आप अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिए, आपकी सारी दुआएं खुद ही कबूल हो जाएंगी। तो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा जैसी, ये भी खूबसूरत दुआ है, कभी वो मांग लीजिए, कभी ये मांग लीजिए। फिर आयत नंबर 29 से 32, इसमें जिन्नात का कुरान सुनना और फिर ईमान लाना, सिमाए कुरान और फिर ईमान लाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफ़र से वापस आ रहे थे, जहाँ बहुत ही ज़्यादा उन्होंने आपके साथ बुरा मामला किया, जो ना अक्लन अच्छा था, ना रिवाजन, ना मुरवतन, लेकिन आप दीन के इस काम के लिए क्या कुछ कर गए, हमारे लिए एक हुज्जत तो तमाम हुई। हम तो अच्छे अच्छे लोगों के बहुत कदरदान, और जब कोई हमारी बात ना माने सुने तो हम कहते हैं कि बस इनसे तो बात भी ना करो, हम दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन जब शिकस्ता दिल के साथ अल्लाह के नबी आए तो अल्लाह ताला ने रास्ते में नखला नाम की वादी में जिन्नात को भेजा और ये सारा मामला उनके साथ है। इससे मेरे आपके लिए क्या सबक की बात है कि कुरान सुनते ही दिल की पुकार पे लब्बैक कहिए, क्योंकि कुरान आपकी रूह के साथ जुड़ता है। फौरन ईमान ले आए, सच्चा ईमान ले आए, अमली ईमान ले आए, रस्मी ईमान को, रिवाजी ईमान को कह लीजिए कि अपने साथ नियत करके अमल वाला और शऊर वाला ईमान में बदल दें, क्योंकि जब तक हम ईमान नहीं लाते तब तक फिर हमारी सुनी हुई बातें भी कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाती हैं। फिर इसमें जिन्नों से एक और अदब सिखाया गया, कालो अन से तो खामोश रहो, कुरान सुनते वक्त खामोश रहना चाहिए। जब हम बैकग्राउंड नॉइज़ की तरह कुरान और उसकी बातें लगा दें और इर्द गिर्द शोर हो, बातें हों, तो भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो हमेशा इसको रिस्पेक्ट के साथ सुनना चाहिए। फिर आप देखिए आयत 29:32 में जिन्नों का ये कहना, या कौमन अजीब दाई अल्लाह वामिनू बिही यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, ऐ हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात कबूल करो और इस पर ईमान लाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दुख देने वाले अजाब से पनाह में रखेगा। और जो शख्स अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले की बात कबूल ना करे तो वो ज़मीन में अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकेगा और न इसके सिवा इसके हिमायती होंगे, और ये लोग खुली गुमराही में हैं। तो क्या पता चला कि जिन्होंने सिर्फ एक बार सुना और मुबल्लिग तक बन गए, हमें क्या हो जाता है? हम बस दफ़ा कुरान को वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते जो देने का हक होता है, तो बार बार का सुनना भी हमें फ़ायदा नहीं देता। इस तरीके से एक इंसान अल्लाह के रास्ते में फिर पीछे होता है कि जिसका नुकसान वो हो जाता है जो इस वक्त हो रहा है। तो हमें इस किताब को भरपूर तरीके से सुनना और समझना है, इस पर गौर व फिक्र करना है और इसकी तरफ तवज्जो करनी है। ये वो किताब है कि जो ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाती है। आप जितना ज़्यादा इसके ऊपर गौर करते जाएंगे, आपका दिल आपको बताएगा कि आप हिदायत पे आ चुके या नहीं।